ஈஸ்வரஹ பரம கிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்ரஹ அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். கல் மே பத்தாயா தா கி ये ब्रह्म संहिता का मूल मंत्र क्या है? ब्रह्म संहिता का मूल मंत्र है ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। ये आप समझ गए? सब समझ गए हैं? हाँ, बस सारे ब्रह्म संहिता आप समझ गए सारे श्रीमद् भागवतम आप समझ गए हैं, सारे वेद वेदांत आप समझ गए हैं, क्योंकि सारे वैदिक ज्ञान का मूल विषय है ये। परमेश्वर भगवान कौन है? श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। और श्री कृष्ण का रूप कैसी है? श्री कृष्ण का रूप है या नहीं? श्री कृष्ण क्या निराकार है? हाँ, निराकार है या साकार है? केवल साकार ही नहीं, कृष्ण सारे सुंदरता का स्रोत है। सच्चिदानंद विग्रह, श्री कृष्ण का जो रूप है वो रूप कैसे है? सत चित आनंदमय। सत का मतलब है नित्य, चित का मतलब है पूर्ण चेतन चिन्मय और आनंदमय। सच्चिदानंद विग्रह, और वे कृष्ण है अनादिर आदिर गोविंद, सारे अनादि के आदि गोविंद है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण ही है सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों का कारण। आप किस कारण ये आए हैं? हाँ? सारे कारणों का कारण जो कृष्ण है, उसको, उनको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, है ना? तो हम आगे बढ़ेंगे अब। हाँ, कल श्लोक 34 तक शब्द शायद हम किया था। ना, पंथास्तु कोटि सतवत्सर संग प्रगम्यो बायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोपस्तिजत प्रपदसिम न विचिन्त तत्ते गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाजदन्त अंडांतरस्थ परमानुचयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। एको अपि असो, यद्यपि वे परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक हैं, एक अपि असो, परंतु रचयितुम जगदंड कोटिम, रचयितुम का मतलब है सृष्टि किए हैं, रचना किए हैं, रचना करने के लिए जगदंड, जगत अंड, जगदंड का मतलब क्या है? ब्रह्मांड। जगदंड कोटि करोड़ो, जत शक्तिरस्ति जगदंड चया जदंत, और जिनकी शक्ति सारे जगत के अंड, जगदंड चया जद अनंत, जद अंत, जिनका अंदर सारे जगत, सारे जगत, सारे ब्रह्मांड, सारे सृष्टि, और उन्होंने अंडांतरस्थ परमानुचयांतरस्थम, हर ब्रह्मांड के बीच है और हर परमाणु के बीच भी है। यह है भगवान का अचिंत्य शक्ति। भगवान हर ब्रह्मांड के अंदर में है और हर परमाणु के अंदर में भी है। यह है भगवान का अचिंत्य शक्ति का प्रभाव। यद्यपि वे एक हैं, परंतु उन्होंने करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि किए, सृष्टि करने के पश्चात सारे ब्रह्मांड में विराजमान है और सारे जगत भी उनमें विराजमान है। यद्यपि वे सारे ब्रह्मांड के, हर ब्रह्मांड के अंदर में भी हैं, फिर भी वे हर परमाणु के अंदर भी हैं। तो समझ गए भगवान का शक्ति कैसा है। भगवान का शक्ति ऐसा इतना अद्भुत है कि हम कभी समझ नहीं पाएंगे। ये कैसे संभव है? एक हैं, फिर भी वे हर ब्रह्मांड के अंदर में हैं। कितने ब्रह्मांड हैं? 100 करोड़ ब्रह्मांड हैं। और हर ब्रह्मांड में कितने परमाणु हैं? अगणित। और परमाणु के बीच भी है। एक होते हुए भी ये कैसे संभव? एक व्यक्ति है, परंतु उसका प्रभाव इतना अद्भुत है कि हर परमाणु के बीच भी उन्होंने विराजमान है। जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता हेतु होने के कारण निर्भेद एक तत्व है। भगवान एक पशु। एक का मतलब क्या है? शक्ति एवं शक्तिमान की अभिन्नता के कारण वे एक है, निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है। भगवान यद्यपि करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि किए हैं, फिर भी उनका शक्ति उनसे पृथक नहीं। जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले परमाणु समूहों के भीतर भी पूर्ण रूप से विद्यमान हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ। भजन का मतलब क्या है? सेवा। सेवा का मतलब क्या है? भक्ति। भजन का मतलब है भक्ति। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को, भगवान को भक्ति करना चाहिए, मतलब प्यार के साथ उनकी सेवा करना चाहिए। अच्छा, तो श्लोक 36 श्लोक। जद भाव भावित धियो मनुजस्तथैव संप्राप्य रूप महिमा सन जान भूषा सुक्तैर्जमेव निगम प्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। यद्भाव भावितो धियो मनुजस्तथैव। मनुजा क्या? मनुजा का मतलब मनु, मनुजा मनु का पुत्र, मनु का औलाद। मनु का औलाद कौन है? मनुष्य, हम सब। हमारा उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? मनु से। तो मनुष्य जब भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप महिमा आसन वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्त द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो ये जो मनुष्य, मनुजस तथैव, कैसे, कौन सी मनुष्य? जो आसन वाहन उपयुक्त रूप महिमा आभूषण आदि, हमें जो कुछ उपयुक्त रूप मिलता है, जैसे अगर रूप बहुत सुंदर हुआ, देखने में बहुत सुंदर हुआ, बहुत यशस्वी व्यक्ति हैं, कोई ऐसे जो बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं, बहुत ऊंचे कोटि के व्यक्ति होते हैं, उनको जो स्थिति जो है वो उनका जो पद अर्थात जो आसन या पद जो प्राप्त होते हैं, कोई बड़े आदमी बन जाते हैं। कैसे बड़े आदमी बनते हैं? अपने पात्रता के द्वारा लोग बड़े बनते हैं या भगवान की कृपा से बड़े बनते हैं? भगवान का कृपा से, वही है असल पात्रता। भगवान का कृपा प्राप्ति ही सबसे बड़ी पात्रता है। तो हमें जब ये मिलता है अर्थात जद भावो भावितो धियो मनुजस तथैव संप्राप्य, संप्राप्य मतलब प्राप्त होकर, रूप महिमा आसन यान भूषण, ये सब हम चाहते हैं। रूप चाहते हैं, महिमा यश आसन पद यान भूषा आभूषण आभूषणों के प्राप्त करके जो महान व्यक्ति हैं उन लोगों ने क्या करते हैं, जो सही रूप से महान हैं उन्होंने, उनको पता लगता है कि ये भगवान का कृपा से ही हमें ये सब मिला है, तब उन्होंने क्या करते हैं, भगवान का महिमा कीर्तन करते हैं, वेद कथित मंत्र सूक्त द्वारा भगवान को स्तुति करते हैं, जैसे देवताओं ने करते हैं। देवताओं का पद कैसे है? बहुत बड़े पद है, इंद्र चंद्र वरुण सूर्य देव चंद्र देव, इन सबको जो स्थिति जो प्राप्ति हुआ है और उनका जो आसन पद जान, उन सबको बहुत सुंदर जान है। ब्रह्मा का जान क्या है? ब्रह्मा जी का हंस, और गणेश का क्या है? हाँ, गणेश का है चूहा। माता का क्या है? शेर। और कार्तिक का क्या है? मयूर मोर। सरस्वती का, सरस्वती का भी हंस है। लक्ष्मी का, हाँ, तो ये सब उनके वाहन है, वाहन या यान, उनसे वो चलते हैं गगन मार्ग में। एक लोक से दूसरे लोक उन्होंने गमनागमन करते हैं इस जान से या वाहन से। तो ये सब जो उनका प्राप्ति हुआ है उनको भली भति पाता है कि ये सब सारे भगवान की कृपा से ही मिला है, और इस कारण उन्होंने क्या करते हैं, हाँ, वेद वैदिक मंत्र सूक्त के द्वारा भगवान का वंदना करते हैं उन लोगों, और उसके कारण क्या होता है, भगवान भी प्रसन्न होकर उनको और भी सुजोग और भी सुविधाएं देते हैं। तो हम अगर कुछ चाहते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान को वंदना करना चाहिए, भगवान को स्तुति करना चाहिए और भगवान को भक्ति करना चाहिए, प्यार के साथ भगवान को सेवा करना चाहिए। जब हम करते हैं तो सब कुछ मिलता है, जब नहीं करते हैं तो हम दीवार पर सिर ठोकते हैं। ये बदनसीब का मतलब क्या है? बदनसीब किसका होता है? बुरा, हाँ, नसीब खराब किसका होता है? जो भगवान को नहीं मानते, और जो भगवान को मान लिया है, जो भगवान को शरण लिया है, ले लिया है, वो है भाग्यशाली। तो हम क्या बनना चाहे, हाँ, हम क्या, हम सत सही रूप से ही हम सब भाग्यशाली बनना चाहते हैं। तो भगवान को सेवा करने से हमको सब मिल, सब कुछ मिले। जब हम भगवान को सेवा करेंगे तो भगवान हमको सब कुछ देंगे। और भगवान को सेवा अगर नहीं करेंगे तो अपना कर्म के द्वारा थोड़ा बहुत मिलेगा कुछ समय के लिए, और बाकी समय एकदम भीख मांगा जैसे रहना पड़ेगा। तो हम क्या भीख मांगा बनेंगे या राजकुमार बनेंगे? तो राजकुमार बनने के लिए राजा को स्वीकार करना चाहिए। तो राजाओं का राजा कौन है? केवल राजकुमार ही नहीं, राजकुमारी भी हम बन सकते हैं। हम सब अगर राजा को स्वीकार कर लिया है तो हम सब राजकुमार या राजकुमारी बन जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? वैदिक सूक्तों के द्वारा, वो वैदिक सूक्तों के में से, वैदिक सूक्त का मतलब क्या होता है? मंत्र, वैदिक मंत्र। और सारे वेदों में से सबसे बढ़िया मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र के द्वारा जब भगवान को स्तुति होता है तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होकर, भगवान हमें जो कुछ हमारा चाहना है पूरा करके हमारा जन्म सार्थक बनाएंगे। और हमको तब क्या करना चाहिए? भगवान जब हमको इतना कुछ देते हैं तो हम भी सोचेंगे कि ये सब भगवान को सेवा में ही लगाना चाहिए। भगवान का सेवा का मतलब कैसा होता है? जैसे पिताजी ने बच्चा को, अपने बच्चा को कोई 2-4 रुपया दिया है, कभी कभी देते हैं ना पिताजी बच्चे को, और वो 2-4 रुपये से बच्चा क्या किया, बाजार में जाकर थोड़ा सा मिठाई खरीदा, खरीद के पिताजी के पास लाके बोला पिताजी आप लीजिए। पैसा था पिताजी का और पिताजी का कोई मिठाई का जरूरत नहीं है, मिठाई नहीं खाना चाहते हैं, बल्कि ये बच्चा जो उनको मिठाई दिया है उससे पिता का मनोभाव कैसा होता है? हमारा सेवा की भी वैसा ही फल होता है, हमारा सेवा से भगवान ऐसे ही प्रसन्न होते हैं। उन्हीं के सब कुछ उन्हीं का ही है और उनका कुछ कमी नहीं है। जिनको लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम से ब्रह्मानम, याद है कल इसका विचार हुआ था, वृंदावन में भगवान को सेवा कौन कर रहे हैं? 100 करोड़ लक्ष्मी देवियां ने सारे संभ्रम के साथ, संभ्रम सेव्य मानम, संभ्रम के साथ, श्रद्धा के साथ, आदर के साथ भगवान को सेवा कर रहे हैं। तो भगवान का क्या कुछ कमी है कुछ किसी चीज का? नहीं। परंतु थोड़ा कुछ हम अगर भगवान को दे देते हैं जो भगवान का ही है, उस वस्तु के द्वारा अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे पिताजी, पिता जब अपना बच्चा जब एक छोटा सा मिठाई लाके उनको देते हैं तो पिताजी का मन में जैसे स्नेह और प्रेम से उनका हृदय भर जाता है, वैसे ही भगवान का हृदय भी हमारे प्रति प्रसन्न होकर हमको सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब श्लोक 37। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभिर्ज एव निज रूपतया कलाभि गोलोको एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। जो अपने धाम गोलोक में अपने स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त लादिनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर के विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। आनंद चिन्मय रस, आनंद आनंद मतलब भगवान का जो आनंद प्रदानकारिणी शक्ति, उन शक्ति को क्या कहा जाता है, ह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। तो आह्लादिनी शक्ति के मूर्तिमती प्रकाश कौन है, श्रीमती राधा रानी। गोलोक वृंदावन में भगवान ये लादिनी शक्ति रूपा श्रीमती राधा रानी और उनका शरीर का विस्तार रूपा सखियों के साथ वृंदावन में लीला विलास करते हैं अखिलात। और वैसे वृंदावन में निवास करते हुए भी अखिलात्म भूतो, वे सब हर जीव के हृदय में भी विराजमान है। सबकी आत्मा जैसे भगवान वृंदावन में इस रूप से विराज करते हैं भगवान। इससे क्या हमें पता चलता है कि भगवान नित्य आनंदमय है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभिस ताभिर्ज एव निज रूप तया कलाभि गोलोको एव निवसति अखिलात्मभूत। ये परमेश्वर भगवान आनंदमय भगवान के साथ अगर हम संयुक्त हो सकते हैं तो हमें भी आनंद प्राप्ति हो, हम भी आनंदमय बन जाएंगे। जैसे आग के सामने रहने से ताप मिलता है, आग से जो ताप निकलता है वो ताप हमको भी मिलता है। इलेक्ट्रिक करंट को टच करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो ऐसे ही हम अगर आनंद को टच कर लेंगे तो क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से ये लाभ होता है। तो हम सब आनंद चाहते हैं, यहां ऐसा कोई है जो आनंद नहीं चाहते हैं, यहां कौन कौन आनंद चाहते हैं हाथ उठाइए, जो सही रूप से चाहते हैं दो हाथ उठाइए और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आनंद मिला, जरूर मिलेगा। इस महामंत्र के द्वारा हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ सकते हैं। और जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान आनंदमय है तो हम भी आनंदमय बन जाएंगे। केवल आनंद ही नहीं, भगवान के साथ युक्त होने से नित्य आनंद मिलता है, नित्यानंद, निरंतर सदैव ये आनंद मिलता रहेगा। मैं तो जल्दी जल्दी ये एक के बाद एक श्लोक पढ़ रहे हैं। मैं क्या बोला था, मैं केवल दिग्दर्शन कर रहा हूं, आपको सिर्फ थोड़ा इसका आस्वादन करने का थोड़ा सा सुजोग देने का कोशिश कर रहा हूं। बल्कि आस्वादन किसको करना होगा, आपको ही करना होगा। कैसे, ये इसलिए किताब ब्रह्म संहिता सबको मिल गए हैं, घर में काल पढ़े थे, घर जाकर पढ़ने से कुछ फायदा हुआ, आनंद मिला, आज शायद और ज्यादा आनंद मिलेगा। क्योंकि आज जो विषय का चर्चा हो रहा है ये आनंदमय परमेश्वर भगवान का ही। तो श्लोक 38, प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्द्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, जिनके अनेक अनेक अचिंत गुण हैं तथा जिनके शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्र द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ. प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेना. भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम. जब हमारे आंखें प्रेम रूप अंजन के द्वारा रंजित हो जाता है, तब जो संत जिनका हृदय निर्मल हो गया है पूर्ण रूप से, उन्होंने कैसे अपना हृदय में क्या दर्शन करते हैं? संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, दर्शन करते हैं हृदय के बीच, हृदय के अंदर. किसको दर्शन करते हैं? ये आदि पुरुष गोविंद को. कैसे दर्शन करते हैं? श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम. उनका रूप कैसी है? श्याम सुंदर श्री कृष्ण है. श्याम सुंदर, श्यामं त्रिभंग ललितं. उनका शरीर तीन जगह ललित बंकिम, क्या बोलते हैं, बेंडिंग, टेढ़ा, बांका, बांका भी होते हैं, बांके बिहारी, टेढ़ा बिहारी नहीं बोलते हैं, बांका बिहारी बोलते हैं, या बंकिम का शंग से ये शब्द का निर्णय हुआ है. तो भगवान त्रिभंग ललितम और ओ रूप नियत प्रकाशम, नित्य प्रकाशमान है भगवान की ये रूप. तो जब कोई कहते हैं आप भगवान को देखे हैं, तो भगवान को देखने का उपाय कैसा है? भगवान को देखने का तरीका कैसा है? भगवान को देखने के लिए क्या करना होगा? इधर उधर ढूंढना होगा? नहीं, हमारे आंखों में एक अंजन लगाना होगा. तो वो अंजन कैसी है? अंजन प्रेम रूप अंजन. भगवान के प्रति हमारा प्रेम का जब प्रकाश होता है, प्रेम जब जब उद्भव होता है, प्रेम का उद्गम होता है, तो उस प्रेम के रूप आंखों से हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं. हृदय में प्रेम का प्रकाश होगा, आंखों में उस प्रेम का अंजन लग जाएगा, तब हम उनको दर्शन कर सकेंगे. तो भगवान को दर्शन करना क्या कठिन है? नहीं, केवल उनके प्रति प्रेम का प्रकाश होना चाहिए. और ये प्रेम का जब प्रकाश होता है, तो हम मंदिर में जब जाते हैं, मंदिर में जाके हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं. तब हम क्या देखेंगे? किसको देखेंगे? तब देखेंगे हमारा हृदय में जो हमारे प्रेमास्पद हैं, वो हमारे सामने मंदिर में खड़े. ऐसे ही भगवान को दर्शन करना चाहिए. भक्ति के द्वारा ही केवल भगवान को दर्शन संभव होता है, इसके अलावा और कोई भी रूप उपाय नहीं है। श्लोक 39। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमांजो गोविंदमादि पुरुषं तमः भजामि। तो अब भगवान का अवतार का वर्णन हो रहा है, जिन्होंने श्री राम, नृसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संखा की कला रूप में, कला रूप से स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान बहुत सारे अवतार में प्रकट हुए हैं, वो अवतार समूह भगवान का अंश और भगवान के अंश कला है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद। इसका मतलब क्या है? नाना अवतारम अकरोद, संस्कृत, ये तो कोई कठिन नहीं, हिंदी भी ऐसा ही है। कौन समझ गए हैं? नाना अवतारम अकरोद इसका मतलब क्या है, आप पीछे बताइए। बस, वेरी गुड। जिन्होंने विभिन्न अवतार धारण किए, नाना अवतारम अकरोद भुवनेशु, कहां भुवनेशु मतलब इस भुवन में, इस भौतिक जगत में। किंतु मतलब, किंतु का मतलब, किंतु का मतलब किंतु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमांजो, बल्कि कृष्ण ही हैं स्वयं भगवान। कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमांजो, वो परम पुरुष परमेश्वर भगवान है श्री कृष्ण। तो हम पहले मूल मंत्र याद है सबको? हाँ, मूल मंत्र क्या है फर्स्ट बताइए आप सब। तो परम ईश्वर भगवान कौन है? श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। तो इसका भी वर्णन यहां हो रहा है, कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमांजो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो हम श्लोक 40 में जाएंगे। हाँ, ओके। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंडकोटि कोटिशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद् ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है तथा करोड़ों ब्रह्मांड में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निरवच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। जस्य प्रभा, जस्य प्रभा मतलब, प्रभा का मतलब प्रकाश या ज्योति, जिनका ज्योति, अंगद ज्योति, भगवान का अंगद ज्योति प्रभवतो जगदंड कोटि, जगदंड कोटि करोड़ों ब्रह्मांड में, कोटिश शेष वसुधादि विभूति भिन्नम, करोड़ों ब्रह्मांड में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निरवच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है। तद ब्रह्म निष्कलम, निष्कलम निष्कलम का मतलब निरवच्छिन्न, मतलब जिसको भेद नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई अंश नहीं है, जो पूर्ण रूप पूर्ण है। निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, अर्थात ये जो ब्रह्म ज्योति जो सारे जगत को, सारे चीज जगत को जो जो प्रकाश करते हैं, वो ज्योति भगवान का ही अंग ज्योति है और ये निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है। ब्रह्म ज्योति भगवान का अंग कांति है, इसलिए ब्रह्म है ज्योति। और परम ब्रह्म कौन है, इस ब्रह्म का स्रोत कौन है, स्वयं भगवान। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। चिन्मय जगत में, चित जगत में जो ज्योति है वो है ब्रह्म ज्योति। इस भौतिक जगत में जो ज्योति है वो कौन सी ज्योति है, वो सूरज का किरण है। तो सूरज ये ज्योति कहां से प्राप्त हो रहा है पता है आपको? हाँ, ये सूरज का जो ये किरण है ये क्या है? हमारे वैदिक वर्णन के अनुसार सूरज इस ब्रह्म ज्योति को रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है। जैसे आईना, आप देखें ना, आईना लेकर ये करने से क्या होता है, आईना ज्योति ये करता है, ज्योति का प्रतिफलन करता है। तो वैसे सूरज एक आयना जैसा ब्रह्म ज्योति को इस जगत में प्रतिफलन कर रहा है। ये जो किरण जो हमें मिल रहा है वो ब्रह्म ज्योति का ही रिफ्लेक्शन, ब्रह्म ज्योति खुद नहीं है, ब्रह्म ज्योति का रिफ्लेक्शन है, प्रतिफलन है। और ये रिफ्लेक्शन कौन दे रहा है, सूरज दे रहा है। और उसके नाते देखिए क्या क्या हो रहा है, जहां भी ज्योति है सब सूरज का ज्योति का ही प्रकाश है। लकड़ी से ज्योति निकलता है ना, लकड़ी जब जलता है तो ज्योति निकलता है। वो लकड़ी कहां से ज्योति लाया है, वो ज्योति कैसे लकड़ी प्राप्त हुआ है, तो फिर चलिए हम पेड़ के बारे में देखते हैं। पेड़ में क्या होता है, पेड़ का पत्ते क्या करता है, सूरज से एनर्जी लेता है। एनर्जी कहाँ स्टोर करता है, उसका कोष में। तो ये जो कोष में जो एनर्जी जो स्टोर हुआ है वही है लकड़ी का दाहिका शक्ति। जलने से वो शक्ति निकल आता। अच्छा, कोक कैला जो है, कैला क्या है पता है सबको? कैला जो बहुत पेड़ जब बहुत साल जमीन के नीचे रहता है, रहने के कारण वो पत्थर बन जाता है, वो है कैला। असल में वो भी है पेड़, हजारों करोड़ों साल ऐसे रहने के कारण वो पत्थर बन गया है, तो उसको हम निकाल के जलाते हैं। तो ज्योति कहाँ से आ रहा है? ये सूरज का ही ज्योति का ही प्रकाश। तो वैसे हम देखते हैं सूरज ही इस भौतिक जगत में ज्योति का स्रोत है सूरज, और सूरज ये ज्योति कहाँ से लेता है? ब्रह्म ज्योति से। और चीज जगत में वो ब्रह्म ज्योति ही जगत को प्रकाशमान करते हैं उस जगत को। और ये चीज ये जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति क्या है? जस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्नकोटि। ये ब्रह्म ज्योति है भगवान का शरीर का कांति। तो भगवान कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये भी एक बहुत सुंदर विचार है। देखिए गोविंदम, गोविंदम का मतलब क्या है? गो का मतलब क्या है? गाय। और विंद का मतलब क्या है? आनंद प्रदानकारी। भगवान गाय को आनंद देते हैं, भगवान आनंदमय हैं, और भगवान वो आनंदमय भगवान गाय को आनंद देते हैं। तो आप सोचिए गाय भगवान का कितना प्यारे हैं। तो गाय भगवान का प्यारे हैं, तो हम अगर गाय को प्यार करेंगे तो क्या होगा? भगवान भी हमें प्यार करेंगे। इसलिए गाय गोपालन गो रक्षा इतना जरूरी है। बल्कि आजकल के जगत में क्या हो रहा है? गो रक्षा नहीं हो रहा है, आज गो हत्या हो रहा है। और इसलिए क्या हो रहा है? भगवान का कृपा से जगत वंचित हो रहा है। कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत फैसिलिटीज मिल रहा है यहाँ के लोगों को, बल्कि ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं रहेगा। ये दुनिया का हाल बहुत ही खराब हो रहा है। भगवान का जब भगवान अगर हम पर नाराज होंगे तो हमें पता नहीं है क्या क्या हो सकता है। इस भौतिक जगत में भगवान के प्यारे गाय का हत्या हो रहा है, केवल एक दो गाय का नहीं, लाखों करोड़ों गाय का हत्या हर रोज हो रहा है। इसलिए कम से कम हम लोगों को थोड़ा सा गाय गो रक्षा का प्रयास करना है, गौ गो पालन। भगवान गोविंद है, भगवान का और एक नाम है गोपाल, और जहां भगवान रहते हैं उस स्थान का नाम क्या है? गोलोक, गौलोक, गाय का लोक। तो ऐसे गाय भगवान का इतना प्यारे हैं, और गाय को पालन करना इतना ही जरूरी है। इस हर श्लोक में हम देख रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये गोविंद नाम भगवान के गाय के प्रति उनका कृपा का ही द्योतक है। श्लोक 41। माया हि जस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण तद् विषय वेद विताय माना सत्यावलंबि पर सत्य विशुद्ध सत्वम् गोविंदमादि पुरुषम तमः भजामि। सत्य रज तथा तमो रूप त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया जिनकी अपरा शक्ति है, उन्हीं सत्वाश्रय रूप परम पर सत्य निबंधन विशुद्ध सत्य रूप आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। माया ही जस्य जगदंड शतानी सूते, माया है भगवान का बहिरंगा शक्ति। माया जगदंड शतानी सूते, सौ हजारों करोड़ों ब्रह्मांड को सूते प्रसव किए हैं। ये माया ही इस जगत का, अनंत ब्रह्मांड को सृजन अर्थात प्रकाश किए हैं। माया से ही उसका उत्पत्ति होता है। और माया का माया त्रिगुण तद विषय वेद वितायमाना, माया त्रिगुणमयी है, त्रिगुणमयी माया का तीन, माया तीन गुण समन्वित है। वो तीन गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व रजो तमोगुण रूपा, तमो रूप त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया, वो माया है भगवान, ये माया है भगवान का अपराशक्ति। माया ही जस्य जगदंड सतानि सूते, त्रैगुण तद विषय वेद वितायमाना, वेद वितायमाना वैदिक ज्ञान को विस्तार कर रही है माया। सत्यावलंबी पर सत्तं विशुद्ध सत्वम, उन्हीं सत्ताश्रय रूप पर सत्त निबंधन विशुद्ध सत्व रूप आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूं। तो यह माया के साथ भगवान का संपर्क हम देख रहे हैं। इसके पहले ब्रह्म ज्योति के साथ भगवान कृष्ण का संपर्क देखा, ऐसे हम इसके पहले अवतारों को साथ भगवान का कृष्ण का संपर्क देखा, इसके पहले भगवान का रूप का वर्णन हुआ है, कैसे भगवान को दर्शन हम कर सकते हैं। मतलब 29 श्लोक में गोलोक का वर्णन हुआ है, 30 से लेकर 34 तक भगवान का रूप का वर्णन, 33 तक भगवान का रूप का वर्णन हुआ है, और उसके पश्चात 35 में वर्णन हो रहा है कि भगवान यद्यपि एक हैं, फिर उन्होंने अनंत ब्रह्मांड को सृष्टि किए हैं, और हर ब्रह्मांड के अंतर हर परमाणु में भी भगवान विराजमान है। और ऐसे वर्णन करने के पश्चात यहां भगवान के अवतार के वर्णन, भगवान का ब्रह्म ज्योति क्या है उसका वर्णन, 41 श्लोक में माया के साथ भगवान का संपर्क का वर्णन, और अब हम श्लोक 42 पाठ करेंगे। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनोसु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्या लीलायितेन भुवनानि जयत्त जश्रम गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। जो स्मरणकारी प्राणियों के मन में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु ज प्राणिनां प्रतिफलन स्मरताम उपेत्या, जो निरंतर भगवान को स्मरण करते हैं, उनकी हृदय में भगवान अपना स्वरूप आनंद चिन्मय स्वरूप को प्रकाश करते हैं, प्रतिफलन करते हैं। आनंद चिन्मय रस आत्मतया मनोसु, जब प्राणिनां प्रतिफलन स्मरताम उपेत्य, स्मरताम उपेत्व, स्मरण करते हुए, स्मरण करने से। हम अगर भगवान को स्मरण करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, भगवान अपना रूप को, जो आनंद चिन्मय रूप को हमारे हृदय में प्रकाश करेंगे। हम स्मरण करते हैं, भगवान प्रकाश करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, भगवान उसको प्रतिदान देते हैं। श्लोक 43। गोलोको नाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य बेले महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमः भजामि। गोलोको नाम्नि निजधाम्नि, निजधाम्नि मतलब अपना धाम, अपना रहने का जगह, हिज ओन रेसिडेंस। भगवान का रेसिडेंस कौन सी जगह है, गोलोक। गोलोको नाम्नि निजधाम्नि, तले मतलब उसके नीचे, क्या है, देवी महेश हरिधाम शु तेषु तेषु, उसके नीचे, सबसे नीचे क्या है, देवी धाम। देवी कौन है, महामाया, महामाया का धाम। ये जो भौतिक जगत, ये है महामाया का धाम, देवी धाम, जहां हम लोग हैं। इसके ऊपर क्या है, देवी धाम के बाहर, इस भौतिक जगत के परे महेश धाम, शिव जी का धाम, और महेश धाम के परे क्या है, हरि धाम या वैकुंठ लोक। तो गोलोक के नीचे है वैकुंठ, महेश धाम, देवी धाम। तेते प्रभाव निचया विहिताश्च जी, जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक, हरिधाम, महेश लोक तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथायोग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। अच्छा, उसके पश्चात श्लोक 44। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपम् अभिजस्य च तिष्ठते सा गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूप माया शक्ति, जो कि सभी के नाम द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति और प्रलय कौन साधन करती हैं, माया। वो माया जो है, वो माया को कौन, क्या है ये माया, भुवनानी छाये वजस्य, उनका चित शक्ति का छाया स्वरूपा है, जिनके, जिनको दुर्गा के नाम में जिनका परिचय होता है, जो दुर्गा के नाम से पूजित होती हैं, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूं। ये दुर्गा या माया भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। अच्छा, इसके पश्चात श्लोक 45। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष जोगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो या संभूतामपि तथा समुपैति कार्यान् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जिस प्रकार दूध खटाई या जामन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वो न तो समान होता है और न ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभू रूप में परिणत हो गए हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ शिव जी के साथ भगवान का संपर्क या शिव तत्व का वर्णन हो रहा है। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष खटाई के संयोग से दूध क्या होता है? हाँ, दही बन जाता है। तो दही और दूध में अंतर है? नहीं, फिर है भी। दही बन गया है, था दूध अब दही बन गया है। हाँ, दूध दही बन सकता है, बल्कि दही दूध नहीं बन सकता है। तो वैसे ही कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए भगवान शिव जी के रूप में प्रकाश हुए। जा संभूताम अपि तथा समुपैति कार्यात्। कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए शंभु के रूप में प्रकट हुए। तो शिवजी कौन है? शिवजी गोविंदम आदि पुरुषम, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ही प्रकाश है। श्री कृष्ण ने ही, नारायण ने ही शिवजी के रूप में प्रकट हुए हैं कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए। एक तो संहार कार्य संपादन करने, और एक कार्य है इस भौतिक जगत में माया के साथ संयोग स्थापन करने के लिए। माया भगवान का बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति होने के कारण माया के साथ भगवान प्रत्यक्ष संपर्क स्थापन नहीं कर सकते। डायरेक्ट रिलेशनशिप कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड। इसलिए भगवान शिव जी के माध्यम माया के साथ संयोग कर रहे हैं। श्लोक 46। दीपार्चिरे वहि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विपरीत हेतु समान धर्मा जस्ताद्रिगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य, जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर, यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक रूप से जलती हैं परंतु गुण में एक समान होती हैं, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। एक दिया से दूसरा दिया जलाया जाता है, और ऐसे हजारों दिया हम जला सकते हैं। दिया जब जलता है तो पहला दिया और जलाए हुआ दिया में कुछ अंतर रहता है? समान धर्म, समान ज्योति ही प्रदान कर रही है। फिर भी पहला दीपक से ही दूसरा दीपक जला है। ऐसे ही भगवान के साथ भगवान का विभिन्न प्रकाश का संपर्क है। जैसे विष्णुतया विभाति, विष्णु रूप से भगवान का या भगवान का भिन्न भिन्न अवतार जो हैं उनके साथ भगवान का कोई भी कोई प्रकार का अंतर नहीं है, भेद नहीं है। वो सब ही भगवान है, स्वयं भगवान ही है। केवल अपना पूर्ण प्रकाश भगवान के रूप में जैसे उन्होंने कर रहे हैं अवतार में, उतना पूर्ण प्रकाश नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति एक ही हैं परंतु उनका पोटेंसी का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं। तो आज हम यहां 46 तक ही हमारा पाठ रखते हैं और कल तो लास्ट डे है, तो कल हमको खत्म करना होगा ब्रह्म संहिता का। खत्म तो नहीं होगा, मैं तो बोला ये हम पाठ कर रहे हैं केवल ताकि आप सब घर जाके बहुत अच्छा तरह पढ़ सकते हैं, पढ़ के ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होकर सारा जगत के ऊपर आपका कृपा बरसाते रहेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? कल कोई प्रश्न मैं नहीं लिया था, लेट हो गया था इस कारण आज थोड़ा जल्दी हम क्लास शुरू किया। कोई प्रश्न अगर है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। यस श्रद्धा, माइक्रोफोन है? माइक्रोफोन तुम अगर माया के पास जाओगे तो माया जोग माया के रूप में तुमको वैदिक ज्ञान का ही प्रकाश करेंगे और वैदिक ज्ञान का ही विस्तार। जैसे माया जो हमें दंड दे रही है, उस दंड देने का कारण क्या है हमको सही रूप से समझाना। तो ये जो सही ज्ञान जो है वो ही है वैदिक ज्ञान। माया तो हमें शिक्षा दे रही है, माया केवल सजा ही नहीं दे रही है, माया शिक्षा दे रही है। तो वो शिक्षा हमें सही रूप से प्राप्त होना चाहिए और जो वो सही शिक्षा ही है वैदिक ज्ञान। और ये माया का जो वो जो रूप जो है वो रूप माया का सरस्वती के रूप में प्रकाश होता है, ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप। दुर्गा देवी के साथ लक्ष्मी जी भी हैं, सरस्वती भी। जब रुपये का जरूरत होता है तो दुर्गा देवी बोलते हैं, लक्ष्मी को बोलते हैं दे दो, और जब ज्ञान का जरूरत होता है तो सरस्वती को बोलते दे दो। तो ये ज्ञान और वैभव दोनों ही दुर्गा देवी के साथ है। ओके, ही हैज द क्वेश्चन फर्स्ट। तुम सामने आके पूछो। अच्छा ठीक है, बताओ। सामने आके बताओ। सुनी समझ नहीं, सुन रहा है। किसका? 34।
क्या समाधि भगवान के लोग के संबंध में नहीं आता?
हाँ, समाधि के द्वारा जो प्राप्ति होता है, क्या वर्णन हुआ है, भगवान के चरण कमल के अग्रभाग तक जा सकते हैं, भगवान को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। हाँ, योग समाधि के द्वारा भगवान को प्राप्ति नहीं होता है। भक्ति के द्वारा योग समाधि के बाद क्या होता है, योग समाधि के बाद भगवान के चरण कमलों में समर्पण होता है, प्रपत्ति, उस प्रपत्ति के द्वारा ही भगवान को हम जान सकते हैं। मतलब प्रपत्ति के बाद पश्चात भक्ति का शुरू होता है, ठीक है। जो कोई बड़े आदमी हैं उसके सामने सर झुका के जाना हो, कोई बड़े आदमी के पास आ जाके बोलेगा तुम कौन हो, तो बड़े आदमी क्या बोलेगा, आपका मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। दाम्भिक रूप से कोई बड़े आदमी के पास जाके उनको हम पहचान सकते हैं, उनको कृपा प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु अगर उनको कृपा, हम उनके सामने विनम्र भाव से जाके अगर हम पूछते हैं कृपा करके आप बताएंगे आप कौन हैं, तब उन्होंने कृपा करके हमको बता सकते हैं। तो देखो, योग तपस्या इत्यादि में ये विनम्रता नहीं है, मैं जान लूंगा, ये भाव रहता है। तो इसलिए उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकाश नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा वो भगवान का अंगद ज्योति को दर्शन करता है, भगवान के नखाग्रभाग का जो ज्योति है, भगवान का शरीर से जो ज्योति निकलता है, वो ज्योति देख के बस वो अंधा हो जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कैसे, भगवान को अगर दर्शन करना है, भगवान को जानना है, तो क्या करोगे, तपस्या करोगे? नहीं, भगवान के पास अपने आप को समर्पण करके, भगवान को भक्ति करके, भगवान को कृपा प्राप्त। समाधि में देखो, समाधि में ज्यादा से ज्यादा परमात्मा रूप में भगवान का हृदय में दर्शन होता है। समाधि के द्वारा दो प्रकार के दर्शन संभव होता है, एक तो ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो सकता है, या परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन हो सकता है। तो जब आत्मा जब परमात्मा के सामने जाता है तो उसका मनोभाव कैसा होता है? एक छोटे आदमी जब बहुत बड़े आदमी के सामने जाता है तो क्या होता है उसका मन, सर झुका लेते हैं, हाँ, समर्पण होता है, आप इतने महान हैं, मैं इतना छोटा हूं, हाँ, मैं आपके शरण में आ रहा हूं। तो ये जो मैं आपके शरण में आ रहा हूं, इसका मतलब है समर्पण या शरणागति। तो ये शरणागति ही भक्ति का शुरू है, तब ये भक्ति के माध्यम तब भगवान का भगवंत रूप का दर्शन होता है, भगवान के रूप में उनका दर्शन होता है। ये भगवान का तीन प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो उनमें से भगवान रूप जो है, उस रूप में भगवान के साथ प्यार का संपर्क स्थापन होता है, और उस रूप में इन इन इस इसके द्वारा, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को सही रूप से जान सकते हैं। यस पारु, इसके अलावा ब्रह्म संहिता का और क्या था मुझे पता नहीं है। महाप्रभु का कृपा से ये पांचवा अध्याय मिला है, और इस पंचम अध्याय में भी हमारा विचार या विषय है 29-56 या 29 से अंत तक। हम क्या चर्चा कर रहे हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना। मीरा को नहीं, आपको भी दर्शन होगा। आंखों में थोड़ा प्रेम अंजन लगा दीजिए। आंखों में प्रेम अंजन लगाइए, बस दर्शन होगा। जरूर होगा, क्यों नहीं। मंदिर में जब जाते किसको देखते हैं? किसको देखते हैं मंदिर में? हाँ बताइए, जोर से बताइए। तो किसका दर्शन हो रहा है? तो भगवान को दर्शन संभव है, हो रहा है। श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक जब दर्शन होगा तो भगवान का ही दर्शन है। वो चला जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जो आप जपते रहिए। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, अवतार है, शक्ति का प्रकाश नहीं। शिवजी भगवान का ही अवतार है। भगवान जैसे बताए हैं, ये ऐसा नहीं कि भगवान का शक्ति का प्रकाश हुआ है, भगवान का ही प्रकाश हुआ है। यहाँ कोई कार्य संपादन करने के लिए शिवजी के रूप में उन्होंने प्रकट हुए हैं प्रकाश। हाँ हाँ, क्या हुआ? रत्नांगदम, रत्नांग, रत्न का मतलब क्या है? रत्न मणि, रत्न अंगद, इकत्रिश, ये तो लिखा हुआ है। रत्नांग, रत्न ज्योतित आभूषण से शोभित, अलंकार आभूषण रत्नों के द्वारा बनाया हुआ। ओके, हरे कृष्णा। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम्, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम्, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू।